知道。
क्या इस इंतजार में थी कि मैं वापस आऊं तो मुझसे कह दे, खुदा देखा तुमने, तुम बंद गली में पहुंची हो। जिस रास्ते पे तुम चल पड़ी थी वो गलत था, ताकि आप मेरे लिए दरवाजा बंद कर दें। मुझे सिर्फ सुकून की तलाश थी, उस चीज की जिसको आपने मेरे लिए फराहम नहीं किया।
अपनी इन बातों से कहीं तुम मैयत को भी बोलने पर मजबूर ना कर दो।
आप मुझे पहचानते हैं?
पहले साल जब मैंने तुम्हें देखा था तुम जवान थी। खुदा तुम्हें सलामत रखे। ये कब्रिस्तान उन नौजवानों से भरा है जो बुढ़ापे में तौबा करना चाहते थे।
आप ये सब?
तुम्हारी माँ अभी मरी है, उनकी कब्र पर रो लो ताकि वो समझ जाए तुम उनसे प्यार करती थी। जानती हो इंसान दो बार रोता है, एक बार जब वो पैदा होता है और दूसरी दफा जब वो अपनी माँ को गंवा देता है। मेरी माँ तो पैदा होते ही मर गई थी, मैंने उसी वक्त उन पर रो लिया।
आप कौन है? मैं आपसे पूछ रही हूँ।
मैं बेटे से कह रहा हूँ कि अगर काम करना चाहते हो तो तेहरान चले जाओ। गलत कह रहा हूँ मोहतरमा?
नहीं, आप ठीक कहते हैं।
मैंने कहा कि अगर चाहते हो तो यहीं पर कुछ काम शुरू कर दो, मैं गाड़ी बेच दूंगा और उसे सरमाया बना लो। गलत कह रहा हूँ मोहतरमा? अगर गलत कह रहा हूँ तो बता दीजिए।
ठीक कह रहे हैं।
उस आबनामा साइन बोर्ड को देख रही हैं? वो शहीदी साहब के बेटे का है जो इस इलाके के बड़ों में से हैं। ये बात सही है कि सिस्टम से उनका राबता है, बहुत से लोग सिस्टम से जुड़े हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है।
क्या है ये आबनामा?
अगर आप सरमाया लगाना चाहती हैं तो मेरी एक बात मान लें, इन घरों में से किसी एक घर की बुकिंग कर दें। अच्छा है, यहाँ आए दिन तरक्की हो रही है। वैसे भी आगा साहब के बेटे हैं, पैसा डूबेगा नहीं।
दाऊद भाई, जोहरा को मेरा ख्याल करना चाहिए, ना कि मुझे उनका। ठीक है, मैं अभी कब्रिस्तान से वापस आ रही हूँ।
आप सिर्फ जो नौहा पढ़ना चाहते हैं वो भारी होना चाहिए।
अच्छा।
हमारा खानदान साहिब इज्जत है।
आपने मेरे अशआर सुने हैं?
नहीं, मैंने नहीं सुना।
मैं पढ़ूं?
पढ़ो।
मेरी माँ मेरे सोग में बैठी है।
हाँ, अच्छा है, इसी तरह का होना चाहिए।
आपको अच्छा लगा?
तुम्हारी मेहरबानी। कल जब तुम आओगे तो मैं तुमसे मुलाकात करूंगा।
खुदा आपके मरहूमीन की मगफिरत करे।
तुम्हारी अम्बात पर भी रहमत हो। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
ज़ोहरा बेगम, किसी चीज की कमी तो नहीं?
नहीं।
ये तुम्हारी बहन जो है, इसको तुम्हारा बहुत ख्याल है, तुम भी इसका ख्याल रखो खुदा खानुम।
हमेशा इस कदर आपके साथ मेहरबान है, कितना अच्छा है कि हमेशा
इस हालत में भी मेरा ख्याल रखते हैं। उनका यही काम रह गया है जिम्मेदारी निभाना। तुम देख रही हो मेरी क्या हालत हो गई है, मैं कितनी खौफनाक हो गई हूँ।
कैसी गलत बात कर रही हैं आप, अभी भी खूबसूरत हैं।
तुम मजाक कर रही हो, मैं हमेशा सोचती हूँ मुझे तुम्हारी आह लग गई है।
मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, जब चली गई तो भी कोशिश की कि पढ़ाई जारी रखूं, कामयाब हूं।
तो फिर क्यों ये मुसीबत मुझ पर टूटी?
अरे भाई, अगर ये तय पाए कि जिसने मुझे तकलीफ दी है उसको सजा मिल जाए तो इस वक्त शहर के बहुत से लोग उलझनों का शिकार होते।
जिस दिन तुम हमारे यहाँ से गई उसी दिन से अब्बू और अम्मी की हालत खराब हो गई। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद को समझते थे।
जब उन्होंने मुझे जलील के साथ शादी करने पर मजबूर किया था तब उन्हें सोचना चाहिए था।
तुम तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला
जो भी हो, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ और मेरा जो मकसद था मैंने उसको पा लिया है।
लेकिन तुम्हारी एक बेटी भी है जो बिन माँ के पली बड़ी है।
अब तो वो खुश है, उसका शौहर अच्छा है, काम में कामयाब है।
एक मुस्तहक दरवाजे पर आया है, मैं उसको ये चीजें दे दूं ताकि सूरे फातिहा पढ़े।
तुम्हारी मेहरबानी।
तुम्हारा शुक्रिया। आरश
आया।
कैसे हैं दाऊद साहब?
हम जो भी खानम जान के लिए करेंगे फिर भी कम है।
अलबत्ता जब हाजिया खानम जिंदा थीं आपने उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
फर्ज की अदायगी थी। मैंने कहा आज और कल में खानम जान के मालो दौलत का ये जो घर में सामान पड़ा हुआ है उसका फैसला करें, उनको आगे दे दें ताकि उनके नाम पर खैरात बन जाए।
हाँ हाँ, ठीक यही रहेगा। सिर्फ जब वर्सा मुअय्यन करेंगे तो आप उसका एहतमाम करेंगे।
नहीं, मेरा मकसद यह है कि आपकी निगरानी में ये काम हो जाए ताकि ये चीजें उनके मुस्तहक तक पहुंच जाए।
ठीक है ठीक है, जब इत्तफाक हो जाएगा मैं खिदमत में हाजिर होऊंगा।
मैं आज रात जोहरा और हुदा के साथ बात करूंगा ताकि कल उसका एहतमाम किया जा सके। हाजी साहब, इन माँ बेटी के बारे में क्या करना चाहिए?
किस चीज के बारे में?
मैंने कहा हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए। मैं हुदा की बातों से समझ पाया हूँ कि वो ज्यादा देर नहीं रहेंगी।
उनके तालुकात पर बरसहा बरस के दौरान पड़ने वाले गर्दो गुबार को रातों रात झाड़ नहीं सकते दाऊद साहब।
बात यह है हाजी साहब, अगर हुदा इसी हालत में वापस चली जाए तो मामला जू का तू रह जाएगा। आपकी बुजुर्गवारी से इन माँ बेटी के एक दूसरे की निस्बत एहसास ठीक हो जाएंगे।
ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा।
जो भी आप मुनासिब समझें।
अबू खाना तैयार है, क्या लगा दें?
रहने दो, मुझे तुमसे काम है। तुमने मोहम्मद हुसैन से बात की?
जी अब्बू, मोहम्मद हुसैन ने कई मर्तबा मायदा और खाला को एक दूसरे से मिलाना चाहा लेकिन मायदा नहीं मानी।
लड़की भी तो बिल्कुल अपनी माँ
की तरह है। तुम भी अगर सो जाते इस बात से बेहतर था कि लोगों का चुगा पहनते। वो जो अल्लाह को प्यारी हो गई है हर चीज से ज्यादा दुआ की मोहताज है, किसी जिक्र की, किसी दुआ की। ला इलाहा इल्लल्लाह,
खुदा उनकी मगफिरत करे। आइए खाना खाएं। आइए हाजी साहब, आप नहीं आएंगे? आइए।
तुम जाकर उनके पास बैठना नहीं चाहोगी?
तुम चाहते हो कि मैं जाकर चिपक जाऊं?
या अल्लाह।
नहीं, तुमसे बात करने का उनका बहुत जी चाह रहा है। वो जब से आई हैं उनकी निगाहें तुम्हें ढूंढ रही हैं।
ये लो बेटी, इस प्लेट में भी रख दो।
उस खुदा का शुक्र है जो खल्क करता है और खल्क नहीं हुआ है, रिज्क देता है और रिज्क नहीं मांगता, वो खिलाता है लेकिन खुद खिलाया नहीं जाता। हम सब बरसों तक मुख्तलिफ मवाक़े पर हाजन खाना मंसारी के दस्तरखान पर मेहमान होते थे। आज रात दुआ करें कि वो इमाम हसन मुज्तबा के दस्तरखान की मेहमान बने। चुनांचा उन्होंने कई साल तक आपकी मजलिस अज़ा बरपा की। इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह।
लीजिए शहीदी साहब। मायदा बेटी, ये अपनी वालिदा को दे दो, उनका हाथ नहीं पहुंच रहा है।
मोहम्मद हुसैन।
लीजिए।
अम्मी जान, वही गोली जो मैंने पिछली दफा लिखी थी आप उसी को खा लीजिए, आपका जहनी तनाव खत्म हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी से फरागत की तकरीब नहीं है कि आप बार बार कहती हैं मैं आना चाहती हूँ। किसकी माँ यहाँ आई है कि आप भी आना चाहती हैं?
तो लब की मोहतरमा माएं खुश आमदीद, आइए आइए
भाई मुस्लिम। अच्छा, तो तुम भी मजाक ऑन कर दो।
सैयद जमाल, तुम येलो केक नहीं बना रहे हो? अरे भाई जल्दी करो, वक्त ज्यादा नहीं है, जल्दी करो।
जमाल, ये तुम बड़बड़ाने के लिए जो तवानाई सर्फ कर रहे हो ना, अगर काम पर लगा दोगे तो तुम्हें खैर दुनिया भी मिल जाएगी और खैर आखिरत भी।
तालिबे इल्म की भलाई इसी में है कि मैं अपना सबक पढ़ूं, ना कि बिजली का ये सब काम करूं।
बड़बड़ाने की कुल्ली तौर पर दो वजूहात हैं, एक तो कमजोरी का एहसास करते हैं और दूसरी इसकी आदत बन जाती है।
अरे
क्या हुआ?
शॉर्ट सर्किट हो गया। चलो अच्छा है, थोड़ा आराम करूंगा, सुबह से काम ही तो कर रहा
हूं।
ठीक है ठीक है ठीक है, अगर मैंने तस्वीर बना ली तो आपको ईमेल कर दूंगा। ठीक है,
इनकी सुनो।
ओहो, आप फिर कह रही हैं मैं आना चाहती हूँ, आप यहाँ आके करेंगी क्या?
अरे ओ मुब्तदी नादान तलबा, तुम्हें मतन पढ़ना चाहिए ना कि हाशिया।
अरे भाई बस करो ना।
अरे ओ मुब्तदी नादान तलबा, तुम्हें मतन पढ़ना चाहिए ना कि हाशिया। अरे ओ मुब्तदी नादान, ए नादान तालिबे इल्म।
खत्म हो गया। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मोमिन आराम से हंसता है। इस बात की आप लोग रियायत कीजिए।
हाँ जी अहमद अली, मैं सुबह से शाम तक इनके लिए मजलिस पढ़ता हूँ ताकि रो लें, लेकिन पत्थर में लोहे की कील नहीं ठोकी जा सकती।
देख लेंगे कि पत्थर में लोहे की कील ठोकी जा सकती है। इम्तिहान की रात में तुम सबको रोते हुए देखूंगा मैं, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। देख
आप हंसने की कराहियत की दलील बताएं, हम नहीं हंसेंगे।
ये बात आप लोगों से पूछनी चाहिए, आपको खुद जवाब दे होना पड़ेगा। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? ये देखो इस तरह से काम करते हैं, ऐसे लगाते हैं क्या? ये क्या तरीका है? उसको देखो, वो देखो, ऐसे इस तरह लगाते हैं क्या? नमूना देखो देखो।
हाजी अहमद अली, अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, लाइट चली गई।
तुमने हाथ लगाया?
जी
मैंने 100 बार कहा है कि जो काम तुम्हें नहीं आता है उसको छोड़ दो, मोहम्मद हुसैन साहब आएंगे ये काम कर लेंगे। तुम लोग तो सिर्फ इतना सीख जाओ कि किस तरह अमामा सिर पर बांधते हैं, उतना ही काफी होगा।
हाजी अहमद अली, हाजी अहमद अली, हाजी अहमद अली, भाइयों में से एक कह रहा था कि बाज़ लोग 14 सिलवटों का बांधते हैं और बाज़ 12 सिलवटों का, क्या ये सही है?
किस चीज को?
अमामे की बात कर रहा हूँ।
अरे तुम्हें इन बातों से क्या मतलब है भाई? तुम तो ये ख्याल रखो कि एक ढंग का अमामा सर पर कैसे बांधते हैं, साफ और मुरत्तब। बिजली को हाथ लगाना हो तो दस्ताने पहनो।
जी अच्छा, भाइयों जल्दी करो, ऊपर जाओ ऊपर जाओ।
जब उसका एहसास अपनी माँ के बारे में ऐसा है तो ऐसी सूरत में मैं क्या कर सकता हूँ अब्बा हुजूर?
एक दफ़ा एक नौजवान ने रसूल अकरम से सवाल किया, मैं किसके साथ नेकी करूँ? तो आपने 3 मरतबा फरमाया अपनी माँ के साथ, 4थी मरतबा बाप के साथ।
अब्बा हुजूर, याद रहे कि हम आपके ही शागिर्द हैं, यही रिवायत और इसके अलावा 10 और रिवायतें चुन चुन कर मैंने उनको सुनाया।
आगा साहब, आपके इस चरागा और लड़ियां सजाने के काम ने हमारे काम की नज़्म तरतीब को दरहम बरहम कर दिया है, हम बेचारे हो गए, क्या करें हम, बताइए।
अच्छा, आप अपने नज़्म व तरतीब को मजहबी त्योहारों के साथ हमाहंग कर लें। इस वक्त 26 बरस हो रहे हैं कि आप यही बात दोहराते चले आ रहे हैं।
26 बरसों से हम आपके सामने बेबस हैं, कम अज़ कम इस साल तो छोड़ दीजिए, इन तलबा को इनके काम और जिंदगी के मामलात निपटाने दीजिए।
आपको तो मालूम है कि हर साल हमारा यही प्रोग्राम है, तो आप पहले ही किसी इलेक्ट्रीशियन से रابطہ क्यों नहीं कर लेते?
आगा साहब, क्या मैंने गुज़िश्ता साल उस अली लंबू को फोन नहीं किया? माफ कीजिए, अली रहमती आया था यहाँ, उसने यहाँ आके सारे कनेक्शन डायरेक्ट कर दिए, यहाँ तो आग लग जाती। पिछले साल 15 शाबान को वो गंजा मोटा लड़का, क्या था वो, जिसका भारी सा वजन था, उसके बाल कुछ कम थे, वो यहाँ आया था। उससे तो बस थोड़ी सी जानकारी थी, जरा सी, बस वो चक्कर लगाता रहता था। मुझे नहीं मालूम क्या राज है, लोगों के पेट भरे हुए हैं मोहम्मद हुसैन।
अहमद अली साहब, आप तशरीफ ले जाएं। इस बात का ख्याल रखें कि कोई शख्स ऐसे काम को हाथ ना लगाए जो उसे ना आता हो। जब हमारी बातें खत्म हो जाएंगी तो हम मोहम्मद हुसैन मियां से कह देंगे कि वो आकर ये जहमत उठा लें।
माफ कीजिएगा, मैं इनके मुंह पे कहता हूँ, 1 महीना 23 दिन हो गए हम दरख्वास्त किए जा रहे हैं, आते ही नहीं।
ठीक है अहमद अली साहब, अब तो अब्बा हुजूर,
मैं अब भी इंतजार करूंगा कि आपकी बातें खत्म हो और आप चलकर हमारा बिजली वाला काम कर दें। माफ कीजिएगा।
अच्छा मेरे बेटे, मायदा अभी कहाँ हैं, घर पर हैं या कंपनी चली गई हैं?
नहीं, वो अभी घर पे है, मैंने उससे कहा है कि वो मॉडल का काम मुकम्मल कर ले ताकि उसका जहन बढ़ जाए।
तुम हुदा खानम को एक फोन कर लो और कल दोपहर के बाद का कोई वक्त तय कर लो, देखते हैं क्या होता है। अब जबकि वो खुद आगे बढ़ी है तो मतलब ये है कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है।
अब्बा हुजूर, कोई फायदा नहीं है, अभी असल मसला खुद मायदा है।
मोहम्मद हुसैन,
आ रहा हूँ। जी आ रहा हूँ।
रात हो गई है।
हेलो, नजमा खानम सलामुन अलैकुम। हमारे दिल में हमेशा आप याद आती रहती हैं हाजिया खानम जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज दोपहर का खाना कब तैयार होगा? नहीं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। जी जी, तो मेहरबानी करके थोड़ा सा ज्यादा और थोड़ी जल्दी बनाइएगा, मैं खुद भी जल्दी ही घर आ जाऊंगा। ठीक है, एक बाल्टी दही, बस इतना ही। खुदा आपका निगहबान हो।
जो ही उसका सामान कस्टम से क्लियर हो जाएगा, एक महीने के अंदर आपका हिसाब चुका दूंगा। नहीं, आप बेफिक्र रहें। नहीं भाई, अगर उसके पास जमानत होती तो वो मेरी मिन्नत ना उठाता कि मैं आपको तकलीफ दूं। जी, अगर जहमत ना हो तो आप उसका काम कर दें, फिर मैं आपकी खदमत में हाजिर होता हूं। जमानती चेक के पीछे दस्तखत कर दूंगा। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? जाहिर है आपको भी अपने कानूनी तरीकेकार को तय करना पड़ेगा। आप सलामत रहें, आपका मुखलिस हो, खुदा हाफिज। मैंने मसाला तैयार कर लिया है, तुम नूडल्स पकाओ।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
कल रात हुदा क्या कह रही थी?
मैं सोचती थी कि इतने साल गुजरने के बाद उसका तर्ज फिक्र बदल गया होगा, लेकिन वो अपने पहले जैसे जज्बाती अंदाज पे कायम है और सबके साथ लड़ना चाहती है।
तुम उसको सीधे रास्ते पर लाओ।
क्या वो बच्ची है?
तुमने नहीं कहा कि मायदा के साथ बैठकर उसका दिल जीतने की कोशिश करो?
जब वो कहती है मुझे काम है, जल्दी जाना है, तो मेरे पास कहने को रही क्या जाता है?
तुम उसे कहती मेरी बहन कि औलाद जिस्म का टुकड़ा होता है, इंसान अपने जिस्म के टुकड़े को कैसे छोड़ सकता है?
मुझे लगता है उनसे रابطے में रहना चाहिए, वहां उनकी बात चलती है। उनके दावतनामा भेजते ही मैं पहुंच जाऊंगा।
अब तुम इतनी उम्मीद भी मत रखो।
तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए।
मेरा काम सही चल रहा है अबू।
मुझे बाहर काम है, दुकान नहीं जाऊंगा। तुम मुझे पहुंचा सकते हो? मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है।
चलिए अबू।
नहीं, तुम अपना नाश्ता कर लो, मुझे जल्दी नहीं है, खा लो। गलत कह रहा है, उसको कहो 5 दिन रुक जाए। 5 दिन? 5 दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, खुदा हाफिज। काम कैसा चल रहा है?
मैंने कहा ना, सही चल रहा है।
तुम्हें यकीन है कि गलत नहीं चल रहा है?
हाँ बू, मैंने कहा कि बाहर जा रहा हूं इसलिए परेशान हो गए?
नहीं, मैं इसकी वजह से थोड़ा परेशान हुआ।
ये चेक आपके पास क्या कर रहा है?
अच्छा सवाल है, तो फिर ये चेक मेरे हाथ में क्या कर रहा है?
मुझे नहीं मालूम।
जो चेक कैश नहीं होता, तुम्हें पता है इसको क्या करते हैं? अगर उसके मालिक का कोई कामकाज ना हो तो उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करते हैं, उसको जेल में डाल देते, और अगर उसका कोई कामकाज हो तो चेक उस मालिक के पास ले जाते हैं ताकि उससे कैश ले लें।
जानते हैं अबू, कंपनी का हिसाब किताब चूंकि मोहम्मद हुसैन के हाथ में है, इसीलिए माफ कीजिए, मैं शर्मिंदा हूं।
आरश बेटे, तुम आरश मीरजाई हो। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारा वजूद मुझसे जुड़ा हुआ है। तुम्हारी तरफ से होने वाली छोटी सी भी गलती मेरे एतबार को जबरदस्त ठेस पहुंचने का बाइस बनेगी, समझते हो तुम? गाड़ी किनारे पर पार्क करो।
जी ठीक है। अबूजान, आप बेफिक्र रहें, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ये चेक भी आप अपने पास रखें, मोहम्मद हुसैन से कहूंगा अकाउंट टू अकाउंट कर लें।
जरूरत नहीं है, तुम इसको मेरी तरफ से अपने लिए ईदी के तौर पर रख लो।
हमारे पास पैसे हैं।
सिर्फ मुझे उम्मीद है कि आइंदा ईद तक मोहम्मद हुसैन एक बार फिर टेंशन का शिकार ना हो जाए और तुम जल्दबाजी में आकर अपनी ईदी मुझसे वापस ले लो।
तशरीफ लाइए।
मायदा बेटी।
सलाम।
सलाम मेरी बेटी।
खुशामदीद।
मैं तेरी वारी। तुम क्या कर रही थी?
मैं इस मॉडल के काम को निपटा रही थी, मुझे 2-3 दिन के बाद इसको हवाले करना है।
वाह वाह, तो उसका काम खत्म हो रहा है।
जी।
तुमने कितना अच्छा किया कि तुम अपनी माँ के साथ सख्ती से पेश नहीं आई।
मुझे उनसे कोई काम नहीं है।
बहरहाल वो कुछ दिनों से ज्यादा यहाँ नहीं रहेंगी, तुम उनको दिल बर्दाश्ता होकर मत जाने दो।
अब आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इतने साल हो गए मुझे छोड़कर चली गई। इन तमाम दिनों में जब मैं अकेली रह रही थी, मेरा दिल चाहता था कोई मेरे पास हो जिससे मैं बात करूं। मुझे उनसे कोई लगाव नहीं है।
हाजी आगा एक हिकायत बयान करते थे, मैं चाहती हूँ तुम भी इसको सुन लो। कहते थे एक दिन एक बंदे खुदा की आरिफ माँ अपने बेटे से पानी मांगती है। उसको प्यास लग रही थी। बेटा सुराही हाथ में लेकर पानी लाने के लिए जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है उसकी माँ सो रही है। वो सुराही हाथ में लेकर खड़ा रहता है, यहाँ तक कि उसकी माँ जाग जाती है तो उससे पूछती है, बेटे तुमने सुराही को जमीन पर क्यों नहीं रखा? वो बोला, मुझे डर था कि आपकी नींद खराब ना हो जाए। समझती हो?
समझती हूँ। आप इतने सालों से मुझे जानती हैं, मैंने अब तक आपकी कोई बात नहीं डाली, लेकिन वाकई में मैं उनको माँ कहकर नहीं पुकार सकती।
ऐसा मत कहो, जो भी हो वो तुम्हारी माँ है, उन्होंने तुम्हें पैदा किया है, 9 महीने अपने पेट में तुम्हारी हिफाजत की है।
वो मजबूर थी वरना ये काम ना करती।
तुम अजीब बात कर रही हो।
प्यारी अम्मी, वो औरत जो बरसों पहले अपनी तरक्की के खातिर अपनी बच्ची को छोड़कर चली जाती है, क्या उसको माँ का नाम दिया जा सकता है?
मैं क्या कह सकती हूँ, जो तुम बेहतर समझो। ये लो, मैंने थोड़ा सा खाना बनाया था ताकि अगर तुम चाहो तो अपनी माँ के लिए ले जाकर उनके साथ खा लो। अब अगर तुम नहीं चाहती तो यहीं बैठकर खुद अकेली खा लो, जाओगी तो अच्छा रहेगा। मायदा बेटी, पानी पर चलना है तो तिनका बनो, हवा में उड़ना है तो मक्खी बनो, दिल जीतना है तो बड़ा आदमी बनो, वो भी माँ का दिल।
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। माशाल्लाह कैसी चौड़ाई है, जो 40 से गुजर जाए इसका मतलब है सब कुछ ठीक है। घर बंगला है, जमीन दो तरफा है, उसकी डायरी भी शीशे वाली है, उसकी सनद कल तक 6 दांग की थी, वकालत भी मौजूद है, एकदम ठीक है। हाँ, 108 दो यूनिट्स डबल फ्लोर वाले बनाओ और उसका मजा उड़ाओ।
इस इलाके की तरक्की के बारे में शक है मुझे दहकानी साहब।
अगर सच पूछे तो मुझे भी इस पर शक हो रहा है, लेकिन इसलिए कि सूरत हाल वाजे हो सके और पता चल सके कि कैसा है, मैं बताऊंगा कि क्या करना है।
क्या कर रहे हैं जनाब?
सच बात यह है कि ये जनाब शक कर रहे हैं। अगर ये अंगूठी बाएं जानिब घूमे तो नेक शगुन नहीं होगा, और अगर दाईं जानिब घूमे तो हम यहीं पर सौदा करा देंगे।
क्या अंगूठी घूमा करती है?
जी हाँ मोहतरमा, क्यों नहीं घूमती, मेरे आधे सौदे इसी अंगूठी से अंजाम पाते हैं। भाई साहब बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल ठीक ही ठीक है। 520 मीटर के बनेंगे 900 तुमान।
घर की कीमत कितनी लगाई है आपने?
अच्छी लगाई है मोहतरमा।
अच्छी यानी कितनी?
फी मीटर 1 मिलियन। लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा।
तोड़ने वाले घर की कीमत इस इलाके में 1,09,00,000 से कम नहीं है।
आपने तो बताया था आप कीमतों के बारे में कुछ नहीं जानती।
अभी तो मुझे पता है।
अलबत्ता आप मालिक हैं, आपको हक है कीमत के बारे में पता करना, लेकिन मोहतरमा हर जगह ऐसे ही होता रहा है, जब सौदा होता है तो कीमत नीचे गिर जाती है।
इसके अलावा आपकी विरासत के इन्हिसार का काम बाकी है, वकालत पर बेचेंगी तो ये खुद दर्द सर वाला काम है।
इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे घर को औने पौने दामों खरीदो।
तो फिर हम तकलीफ नहीं देंगे, ये मोहतरमा सोच रही है कि हम इनके घर को औने पौने दामों खरीद रहे हैं।
मोहतरमा घर में कौओं की आवाज गूंज रही है, यही जो इसका खरीदार मिल गया है उस पर खुदा का शुक्र अदा करें। अगर आप थोड़ी सी रियायत कर देंगी तो आपके लिए अच्छा खरीदार ढूंढ दूंगा, ये खुदा का बंदा भी खरीदने के मूड में नहीं था।
मैंने आपको कीमत बता दी है।
सिर्फ आप इस बात का ख्याल रखें कि फर्श पर चीड़ के फल नजर ना आए, खरीदारों को अच्छा नहीं लगता।
से पहर को या कल सुबह के वक्त प्रोग्राम बना लेंगे,
जाकर देख लेंगे। अगर आपको पसंद आया तो इंशाल्लाह मामला तय हो जाएगा।
अम्मी जान।
हाँ बेटी।
लाइए मुझे दे दीजिए।
जीती रहो बेटी। क्या हुआ है बेटी?
कुछ नहीं।
कौन है?
हम हैं फूफी।
अंदर आ जाइए। सलाम फूफी।
सलाम मेरी जान हुदा, तुम ठीक हो?
जी।
मायदा बेटी आओ।
अम्मी जान ने खाना बना कर दिया था ताकि एक साथ बैठकर खा लें। वो चाहती हैं कि जबरदस्ती मैं आपको माँ मान लूं। जब उन्होंने देखा कि मैं आने वाली नहीं हूँ तो वो खुद मेरे साथ आ गई।
ऐसा मत कहो, मैं यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा देख सकूँ। मेरी बच्ची, तुमने खाना तो नहीं खाया है?
ये लोग जो दरवाजे पे खड़े थे, इनका यहाँ क्या काम था?
उन्होंने गलती से घंटी बजाई।
हाँ, तो ये तो बताए कि आप यहाँ आई किस लिए हैं?
मायदा, तुम ये किस तरह बात कर रही हो? अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करते।
मैं उस शहर में आई हूँ जिसमें मेरी परवरिश हुई, तुम्हें कोई एतराज?
ये अपनी माँ की फातिहा खानी में आई है, कोई एतराज है?
अम्मी जान, आप इन मोहतरमा के बारे में गलत सोच रही हैं। ये यहाँ इसलिए नहीं आई है कि अपनी माँ की फातिहा खानी में शिरकत करे, ये आई है ताकि पैसे बटोरकर वापस चली जाए। वो लोग जो दरवाजे पर थे वो प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ से आए थे।
तुम्हारी बातें खत्म हो गई?
नहीं। क्या आप हम पर एक एहसान कर सकती हैं? थोड़ा सब्र कर लें कि मेरी नानी का कफन खुश्क हो जाए और उस वक्त हम बैठकर खुद हिसाब किताब कर लेंगे और आपके साथ का फैसला भी कर लेंगे।
आवाज नीचे, चुप रहो। चीखो मत, बुरी बात है, पड़ोसी सुन लेंगे। आओ चलो, चलो अंदर, चलो चलो।
एक उम्र गुजर गई, आप उठकर चली गई पेशरफ्त के खातिर। डॉक्टर भी बन गई, अब तो खुश है ना?
इस बीच तुम्हें क्या हो गया जो मेरे साथ ऐसे बात कर रही हो?
कुछ नहीं, बस मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई दुनिया के उस कोने से उठकर यहाँ आए, मेरा सुकून बर्बाद कर दे और लोग मेरे सर पर सवार होकर कहते रहे कि मुझे उसके साथ औलाद बनकर बर्ताव करना चाहिए।
मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पे हूँ ताकि अपनी इर्द से मुतालिक जिम्मेदारियों को निभाऊं, बिल्कुल उन्हीं बरसों की तरह जिसमें सब लोग मेरे शर से महफूज थे। तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा।
आप मेरे साथ चल रही हैं या नहीं? माफ कीजिएगा।
तुम ऐसा क्यों कर रही हो हुदा? तुम्हारी ममता के जज्बात कहाँ गए? ये लड़की पूरी उम्र यहाँ माँ के बगैर पली बड़ी है, क्या तुम समझती हो?
तो क्या दूसरों ने मुझे समझा है जो मैं समझूं?
वो तुमसे मिलने की आस लेकर यहाँ आई थी।
क्योंकि वो मुझसे मिलने आई थी इसलिए मैं झूठ बोलूं?
काश तुम थोड़ी और देर से आई होती तो तुम्हारी मरहूमा माँ का कफन खुश्क हो जाता।
शहीदी साहब, भले आदमी, एक महीने से आप कहते आ रहे हैं कल चेक कैश होगा, परसों कैश होगा, लेकिन अब तक ना कल आया और ना ही परसों।
आदरी साहब, क्या मैं आपके पैसे खाना चाहता हूँ कि आप मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं?
जाहिर है कि आप नहीं खा पाएंगे, लेकिन जब आप मुझे चेक पकड़ा देते हैं तो मैं भी किसी और को चेक देता हूँ।
जी आपकी बात सही है, मैं अभी आपको चेक दे देता हूँ।
ये या तो कल पास होगा या फिर परसों।
नहीं मेरे भाई, अगले हफ्ते पास होगा, लेकिन अब उसकी तारीख नहीं।
छोड़ो अपना ये चेक। अरे भाई काम बंद करो।
अरे इधर आओ पादरी साहब, इधर आओ।
ये सब उठाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से।
सुन तो दो।
मजाक बना के रख दिया मेरा। अरे भाई काम बंद करो।
पादरी साहब, पादरी साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक मिनट रुक के बात तो सुन ले। मेरे आदमियों के सामने यार मेरी बेइज्जती तो मत करें भाई, ये लोग ऐसे ही मेरी बात नहीं सुनते हैं। ये ले अपना चेक ले और जाएं।
ये क्या तमाशा है, तुम तो तेल के कुएं पर बैठे हुए हो।
कौन सा कुआं?
तुम बड़े बाप के बेटे हो, अगर तुम नहीं बैठोगे तो क्या मैं बैठूंगा उन तेल के कुओं पर?
ठीक है मेरे भाई, ये लें आप अपना चेक लें, जब मेरे कुएं का तेल बिक जाएगा तो मैं आपका काम निपटा दूंगा। ये लें अपना चेक। तुम लोग यहीं ना रुको, तुम लोग नीचे जाओ, जाके अपना काम करो।
शहीदी साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, अगर एक हफ्ते से एक दिन भी बढ़ गया तो पूरे शहर में सबको बता दूंगा कि आपको मशीनरी ना दे। चलो भाई काम शुरू करो, तुम लोग भी शुरू करो, काम शुरू कर दो भाई।
आओ चलो, बैंक मैनेजर इंतजार में है। सेंट्रल बैंक के मैनेजर तो नहीं है जो तुम इस हद तक मुझे कोस रहे हो?
मैं दो दिन से टाइम लेने की कोशिश कर रहा हूं।
क्या कह रहा था वो?
आपने अभी प्रोजेक्ट को इस हद तक आगे नहीं बढ़ाया और लोन के पीछे पड़ गए हैं।
जी, लेकिन हमने जो लोगों से पैसे लिए हैं वो ज्यादातर जमीनों की खरीदारी के लिए अदा किए हैं।
इन फाइलों को देख रहे हैं आप? ये सब लोन मांगने वालों की हैं।
मेरे ख्याल में आरश ने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि हमें एक फौरी लोन की जरूरत है।
हाँ, इन्होंने कहा था। आप ये देखें, सब बारी के इंतजार में है। न इनका काम सही चल रहा है कि पैसे की वापसी के बारे में भरोसा किया जा सके, न ही कोई भरोसेमंद जामिन है जो इनके लोन के बारे में जमानत ले सके। आप ये पेपर तैयार करके लाएं, जब आपका जामिन जमानत ले लेगा उसके एक महीने बाद आपको लोन मिल जाएगा।
सादी साहब, एक महीना बहुत ज्यादा वक्त है।
आपका मतलूबा लोन भी बहुत ज्यादा है मेरे भाई।
अच्छा, कम अज कम जामिन के सिलसिले में आप हमें कुछ रियायत दे सकते हैं?
अगर इनके वालिद दस्तखत कर देंगे तो काफी है।
देखिए, मैं खुद अगर ज़रूरत पड़ी तो चेक भी दे सकता हूँ और बॉन्ड भी।
नहीं हो सकता शहीदी साहब, मैं कानून नहीं तोड़ सकता हूँ।
सईदी साहब, हम अपने कुछ ज़ाती मसाइल के बिना पर नहीं चाहते हैं कि हमारे वालिद जमानत दें। अगर कोई और कानूनी राह हल है तो मेहरबानी करके हमें बताएं।
तो फिर किसी और भरोसेमंद जामिन को ढूंढिए।
क्या हाजी शहीदी साहब जामिन बन सकते हैं?
अगर वो हुक्म करें तो हम पूरे बैंक की पूंजी ही उनके हवाले कर देंगे।
जी ठीक है, अगर आप इजाज़त दें तो हम आपको बाद में जहमत देंगे। इजाज़त चाहता हूँ।
सलामत रहें।
खुदा हाफिज।
अपने वालिद को सलाम बोल दें।
सलामत रहें। कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह वो हमारा साथ देंगे।
साथ देंगे। यानी तुम्हें और कोई वाकिफ आदमी नहीं मिला था? मैं किसी भी बैंक में चला जाऊं और कह दूं कि मेरे अब्बा हुजूर जमानत देंगे तो इससे 10 गुने ज्यादा पैसे बगैर किसी मिन्नत के मुझे दे देंगे।
हमारे पास जो भरोसे के आदमी हैं उनमें एक मेरे वालिद हैं और एक तुम्हारे वालिद हैं। मेरे वालिद को तुम पसंद नहीं करते और रह जाते हैं तुम्हारे वालिद, वही जामिन बन सकते
हैं। सलाम वालेकुम। खुदा आपका भला करे जनाब। जब से आबनमा प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है मेरे बीवी बच्चों की खुशी देखने लायक है। अब मेरा सुबह शाम का काम यही हो गया है कि उस प्रोजेक्ट को देखें और खुश हो जाए।
कौन सा घर भाई, हमने तो कुछ बनाया ही नहीं।
हमने इंजीनियर से उस जगह के बारे में पता कर लिया है।
अच्छा,
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जहमत नहीं दूंगा, आप चलता हूँ। इजाजत, चलता हूँ, खुदा हाफिज। शहीदी साहब, शहीदी साहब, आपने कहा था कि टाइम से पहले दे देंगे, तो इसके बारे में क्या
आपको कुछ मालूम नहीं है? बाद में आपको बताएंगे।
खुदा हाफिज। तुम्हें हाजी साहब को बताने की जरूरत नहीं है, मैं जमीन के बारे में उनसे खुद बात कर लूं।
मेहरबानी करोगे,
कहो,
मुंह बंद रखोगे और गाड़ी का दरवाजा खोलोगे?
आपकी मेहरबानी
जनाब। मीरजाई के यहाँ मरहूम हुई खातून की रूह की सलामती के लिए सलवात भेजे।
शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, खुदा आपके मरहूमीन की मगफिरत करे।
शुक्रिया।
इंशाल्लाह मैं आप लोगों की खुशियों में इसका सिला दे सकूं। बहुत
शुक्रिया।
ये लीजिए।
शुक्रिया
हाजी साहब। आप
वहीं रख दो, मैं ले लूंगा। तुमने लिया?
मैंने ले लिया हाजी साहब।
हुदा खानम, मुझे माफ करना, मैं अभी हाजिर होता हूं। सईद कैसे हैं? उनका कामकाज ठीक चल रहा है?
मुझे कोई इत्तला नहीं।
क्या मतलब?
5 साल हो गए मैं और वो अलग हो गए हैं।
अरे, तुम दोनों के दरमियान क्या मसला था?
मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती।
लेकिन बहरहाल तुमने अच्छा किया जो आ गई। काश जल्दी आ जाती कि हाजिया खानम से भी उनकी मौत से पहले मिल पाती।
हाँ, ये नहीं हो सका। मुझे अपने कामों को निपटाकर आने में 1 हफ्ता लग गया।
बेचारी, उनका बहुत जी चाह रहा था तुमसे मिलने को।
क्या हो सकता है हम इस मौजू पे बात ना करें?
ठीक है,
असल मौजू की तरफ आते हैं। मैं वहां अफ्रीका में 2 साल से एक जेनेटिक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूं।
हाँ, आरिश ने मुझसे कहा था कि तुम कुछ अहम और अजीबोगरीब काम कर रही हो। कहा कि हुदा खानम को जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो अच्छे खासे मजामीन आ जाते हैं।
ये अहम प्रोजेक्ट है, इसकी इब्तिदा में तो स्पॉन्सर करने वाला था, लेकिन जब प्रोजेक्ट ने ज्यादा तूल पकड़ा तो वो भी दस्तबरदार हो गया। मेरे पास जो था मैंने लगा दिया, लेकिन अब मुश्किल हो गई।
हाँ, इस तरह के कामों के लिए ज्यादा पैसे दरकार होते हैं,
इसीलिए मैं जल्दी इर्सो मीरास का फैसला करना चाहती हूँ। आज मायदा के दिल में जो कुछ भी आया, हमारी माँ के कफन के खुश्क ना होने के बारे में मुझसे कह दिया। अब आप मुझसे कुछ ना कहें।
कुछ ज्यादा तो नहीं, सिर्फ यही घर जिसमें इस वक्त हम हैं ये बाकी रह गया है।
बस यही है?
हाँ यही है।
अब्बा की तो बहुत जायदादें थी।
थी, लेकिन वफात से पहले वक्फ कर दी।
बहरूस रोड वाले घर को भी तो लाइब्रेरी बना दी।
16 मीटर रोड वाले प्लॉट को भी शिफा खाने के लिए दे दिया। अपने गोदाम को भी स्कूल में तब्दील कर दिया। वो प्लॉट भी जो ग्रीन बेल्ट में लिया था उस पर यूनिवर्सिटी बना दी। इसमें तुम्हारी बेटी ने भी तालीम हासिल की। उसे भी अपनी दुकान बेचकर बनवाया था।
यानी हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा।
तुम चाहती हो जहां जहां मैंने बताया तुम्हें साथ लेकर चलूं? अलबत्ता वफ करदा इदारों की खैर बरकत के एवज हाजी हबीब ने पूरे शहर को अपने और हाजिया खानम के लिए दुआगो बना दिया।
वो घर भी अगर कोई खरीदे तो 9 मिलियन का है, उसका आधा जोहरा का है।
तुमने कीमत लगाई?
एक प्रॉपर्टी डीलर आया था, उसने कीमत बताई।
तुमने ये अच्छा नहीं किया हुदा खानम। मुझे पता नहीं, शायद मैं भी इस वक्त कोई सही बात ना कर सकूं, लेकिन घर के दामाद की हैसियत से मैं तुम्हारी माँ की कजा नमाज रोजों के बारे में सोच रहा
हूं। विरासत के तायुन में कितना वक्त लगेगा?
हुदा खानम, मैं नहीं चाहता कि इस बात की चर्चा हो कि हाजी हबीब के वर्सा अभी उनकी माँ ने अपना सर जमीन पर नहीं रखा कि उनकी जायदाद पर लड़ पड़े हैं।
मेरे अब्बा की तमाम जायदाद इस शहर के लोगों को मिल गई है, वो बेजा करते हैं कि बेहुदा बातें करें।
यह मामला हमारे दरमियान रहना चाहिए, हत्ता कि मैं नहीं चाहता जोहरा को भी पता चले। मैं तुम्हारा हिस्सा खरीद लूंगा और तुम भी मुझे अथॉरिटी लेटर दे दो घर के आधे हिस्से के मुतालिक।
कितना लिख रहे हैं?
इस वक्त बैंक में मेरे नकद पैसे कम है, पैसा चीन से सामान मंगवाने के लिए लगा दिया है। तुमसे कम रेट पर लेने पर मजबूर हूं, लेकिन तुम पैसे नकद ले सकती हो।
अफसोस की सीट नहीं मिल रही।
पहली परवाज जिसके जरिए मैं जा सकती हूं कब है?
इजाजत दे जरा।
हेलो।
हेलो, सलाम, मैं मोहम्मद हुसैन हूँ।
सलाम, ठीक हो?
आपके पास आज वक्त है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ।
इस दरमियान हम एक दूसरे से कम मिले हैं?
नहीं, सच पूछे तो मौका नहीं मिला हमें एक दूसरे के साथ बात करने का।
अपना एड्रेस मुझे SMS कर दो, मैं आधे घंटे में आती हूँ।
ठीक है, शुक्रिया।
2 बजे इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से उमान के लिए एक फ्लाइट है, लेकिन वहाँ पर आपको अपनी फ्लाइट बदलनी पड़ेगी और वक्त भी ज़्यादा लगेगा।
कोई हर्ज नहीं है, बुक कर दो।
अफसोस की सिस्टम में ख़राबी है, जैसे ही ठीक होगी मैं आपके नाम पे टिकट बुक कर दूँगी।
ठीक है,
आप अपने कागजात दे दें।
कॉन्टैक्ट नंबर इसमें लिखा है।
ठीक है,
आज मेरी फ्लाइट है, थोड़े टाइम के लिए उमान में रुकूँगी। मैं नहीं सोचती थी कि मेरे अब्बा इतने सखी हैं, मैं ज़्यादा पैसे का बंदोबस्त नहीं कर सकी। हाँ, अब मालूम नहीं कि हमारा प्रोजेक्ट जारी रह पाएगा या नहीं। परेशान ना हो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। खुदा हाफिज़। ओके, बाय।
तुम कंपनी के हालात के बारे में कुछ नहीं बताओगे, समझे?
ठीक है, मेरा ध्यान है।
सलाम।
सलाम बेटे।
खुशामदीद।
खुशामदीद, आइए।
क्या खबर है?
हम फूले नहीं समा रहे हैं कि आप हमारी कंपनी देखने के लिए आई हैं। आइए, हम आपको अपना काम दिखाते हैं, आइए।
तुम अपने दिखावे को बाद में जाहिर करना, मैं मोहम्मद हुसैन से अकेले में बात करना चाहती हूँ।
अम्मी कहती थी आप किसी से शर्माती नहीं है, लेकिन इस हद तक मुझे नहीं मालूम था।
खुशामदीद, तशरीफ लाएं।
शुक्रिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन तुम्हारी सास बन जाऊंगी, कहीं मुझे माँ मत कह देना। वही फूफी जात मामू जात बहन ही ठीक है, नहीं तो मुझे लगेगा कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है।
जो भी आप दोनों को देखेगा वो ये सोचेगा कि आप दोनों बहनें हैं।
तुम्हारी कंपनी के साइन बोर्ड तो पूरे शहर में भरे हुए हैं। बहुत खूब। मायदा के बाप में इक्तसादी सूझबूझ नहीं थी पर तुम में है।
खुदा का शुक्र है हमारे हालात बुरे नहीं है, और हाँ कंपनी खुद मायदा के नाम पर है।
सच में दिलचस्प है। सोच भी नहीं सकती थी कि शहीदी साहब का बेटा ऐसे अखलाक का मालिक है। तुम्हारा राबता भी तुम्हारे काम की तरह ही है।
जी अच्छा है, मैं मादा को चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वो भी मुझे चाहती होगी। बैठिए।
जब मैं सईद से अलहदा हो गई तो मैंने पूरी कोशिश की कि मायदा को अपने साथ ले जाऊं, लेकिन उसकी बाप की राय आखिरी लम्हे में बदल गई। मैं भी उसके बाद काम में उलझ गई, लेकिन जब मुझे पता चला मायदा शहीदी साहब के बेटे के साथ शादी कर रही है तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने सोचा कि मायदा की खानदानी जिंदगी मेरी तरह बर्बाद नहीं होगी।
इंशाल्लाह कि ऐसा ही हो।
मैं आज रात जा रही हूं, तुम्हारी बात सुनने के लिए आई हूं। बात नहीं करना चाहोगे?
जिस वक्त हम दोनों ने शादी की कई मरतबा मैंने सोचा कि आपको फोन करूं, लेकिन बहरहाल हर दफा नाकाम रहा।
अब तो मुझे आदत हो गई है कि खानदान में से कोई मुझे फोन ना करे।
मुझे इससे कोई गरज नहीं कि आप ईरान से जाने पर क्यों मजबूर हुई। मैं कोई राय भी नहीं देना चाहता हूं, और हर शख्स अपना खुद जिम्मेदार है। मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं।
तुम पहले शख्स हो जिससे मैं बात सुन रही हूं। अच्छा तो अपनी बताओ।
मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। अब आप जा रही हैं तो कहने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है।
यानी मैं चली जाऊं?
नहीं, देखिए जिस वक्त हम दोनों ने शादी की तो मायदा ने मुझसे चाहा कि हम कभी भी बच्चा पैदा ना करें। पहले तो मैंने ज्यादा संजीदा नहीं लिया, मैंने उसको जिम्मेदारी उठाने के खौफ और क्या पता इस तरह की बातों से ताबीर किया, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि मसला बहुत ज्यादा संजीदा था।
ये एक जाती मसला है।
लेकिन अफराद अपने जाती फैसलों को उन हालात के जेरे असर करते हैं जिनमें वो परवरिश पाते हैं, उनके जेरे असर जिनको वो देखते हैं। मायदा बच्चे के लिए जान छिड़कती है, जब वो कोई बच्चा देखती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है, उछल के उसको गोद में उठाती है, लेकिन उसको खौफ माँ बनने का है।
तुम मुझे कसूरवार समझते हो?
मैंने आपसे कहा कि मैं कसूरवार के पीछे नहीं पड़ा हूँ। आप भी ऐसे हालात से दो चार थी कि ईरान से जाने पर मजबूर हुई, लेकिन मसला यह है कि मायदा माँ और बच्चे के दरमियान रबते के बारे में अच्छा तस्वुर नहीं रखती है। मैं आपसे दरखास्त करना चाहता था कि आप किसी तरीके से उसके करीब आ जाएं।
आज मायदा तुम्हारी माँ के साथ आई थी घर के पास, उसका रवैया अच्छा नहीं था, जो उसके मुंह में आया उसने कह दिया। मेरा नहीं ख्याल कि ये राबिता ठीक होने वाला है।
लेकिन आपको चाहिए कि उस राबते को ठीक करें। आप ऐसा काम कर सकती हैं कि वो आपको समझ सके।
तुम क्यों अपने माँ बाप से मशवरा नहीं करते हो? जो बात मैंने समझी है वो ये कि उन्होंने उसके माँ बाप के खला को पुर किया है।
मैंने मायदा से वादा किया है कि इस बारे में अपने माँ बाप से कोई बात ना करूं, और अपने वादे से पीछे हटने का मेरा कोई इरादा भी नहीं। आप कॉफी पियेंगी ना?
हाँ।
इन बरसों के दौरान मायदा ने आपकी बहुत सी तस्वीरें जमा कर रखी थी, जब भी कोई वाकया रोनुमा होता था वो बैठकर गौर से उनको देखती थी। उसके मौजूदा रवैये को ना देखें आप, उसके तमाम रवैये जिद की वजह से हैं। मायदा आपसे प्यार करती है, मैं उसको जानता हूं।
क्या तुम जाग गई बेटी? आज तुम बहुत सोली बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटी?
हाजी हबीब आए, इन कपड़ों को उठा लें। खुदा बेटी तुम भी जरा हाथ चलाओगी तो अच्छा रहेगा। वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ जरा मदद करो।
आओ मदद करो ना, खड़ी क्यों हो?
चलो वापस आ गई। तुम कौन हो? मैं हुदा हूँ। तुम्हारी शक्ल इस तरह क्यों हो गई है? मैंने सख्तियाँ झेली हैं, लेकिन मैंने खुद से वादा किया है कि दूसरों को सख्ती में मुबतला ना करूं। तुम्हें देखना चाहिए कि दूसरे लोग क्या कहते हैं। वो लोग जो चाहे कहें, मैंने उनकी बातों की खातिर अपनी जवानी गंवा दी है। मैंने अपनी खुदगर्जी की बिना पे अपनी जवानी गंवा दी है। मैं कभी खुदगर्ज नहीं थी, नहीं थी। अगर मैं खुदगर्ज ना होती तो मैं अपनी बेटी को ना छोड़ती और ना जाती। वापस आ गई हो? मैं जाने पर मजबूर थी, अभी तो मजबूर नहीं हो। हूँ, अभी तो मजबूर नहीं हो। मजबूर हूँ। तुम तन्हाई से उकता नहीं गई हो। अकेली नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ और अकेली ही रहूँगी। हेलो।
सलाम अंसारी मैडम।
बोलिए।
आपका टिकट तैयार है, मैंने इशू कर दिया है।
क्या आप कैंसिल कर सकती हैं?
क्या मतलब? कैंसिल करेंगी तो पैसे कटेंगे।
कोई मसला नहीं है।
ठीक है, अगर आपका प्रोग्राम बदल गया है तो कैंसिल कर देती हूँ।
शुक्रिया।
ठीक है।
اینجا برای سنوشتر